ओम शांति। जैसा कि आज बाबा ने एक्सप्लेन किया मुरली में कि हमें हर कार्य करते हुए या उठते बैठते भी क्या करना है, चुप रहना है। चुप रहने के लिए क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं चुप रहो, तो सीधा किसी को चुप रहो कहना उतना अच्छा नहीं लगता है। क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं, शांत रहो, है ना, शांत थोड़ा फिर भी तो कहते हैं शांत रहो, है ना। तो जो चुप रहो कहते हैं, जो चुप हैं, है ना, तो कई बार वास्तव में हम चुप दिखाई देते हैं और चुप होते नहीं हैं, सही है। जैसे मान लो कोई माता यहाँ आई हो भट्टी में और उसे मैसेज मिले कि वो तो इधर भट्टी में आई और उधर बच्चा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गया, है ना, तो क्या संकल्प चलेगा उसको, माता जी को क्या संकल्प चलेगा, कि जब मैं वापस आऊंगी तब बताऊंगी, है ना, क्या होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, होगा ना ऐसा। तो बाहर से तो चुप है माता, लेकिन अंदर जो संकल्प चल रहे इसको क्या कहेंगे, चुप रहना कहेंगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो चुप रहो या जिसको कहते हैं शांत रहो, तो शांत कब रहेंगे, पहला ही लेसन है बाबा क्या कहते हैं, जो ही जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो स्वतः शांत हो जाते हैं, चुप रहना नहीं पड़ता है ऑटोमेटिक। क्योंकि जब हम इस बॉडी में हैं, इस देह में हैं, तो देह से संबंधित संकल्प चलेंगे ही। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले चुप हो जाओ अर्थात अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझते ही क्या हो जाता है, आत्मा समझते ही आत्मा से संबंधित संकल्प ऑटोमेटिक साइलेंस हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा कहाँ की रहने वाली है, वहां कोई संकल्प ही नहीं है। तो वास्तव में चुप रहना है तो हमें आत्मा समझना पड़ेगा स्वयं को। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाबा की याद में रहो, है ना, बाबा को याद करते रहो तो क्या होगा, वर्षा मिल जाएगा। कौन सा वर्षा मिल जाएगा, कौन बताएगा, कौन सा वर्षा जी, विश्व की बात सही। तो हम इंतजार करते रहेंगे ना, वर्षा मिल जाएगा, वर्षा का इंतजार करना है ना कि नहीं करना है, करना है ना। बाबा कहते हैं इंतजार नहीं करना है, वो तो प्रारब्ध है जो हम सत्युग में प्राप्त होगा या जो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी वो प्रारब्ध है, लेकिन वो जो वर्षा मिलने वाला है ना उसकी अनुभूति कब करना है, अभी करना है। क्योंकि जब हम सत्युग में होंगे, स्वर्ग में होंगे, तो ये एहसास ही नहीं होगा कि हम जीवन मुक्ति में हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो वर्षा है ना इसकी भी अनुभूति अभी करेंगे। तो वास्तव में जो कहते हैं ना कि बाबा को जैसे सागर, सागर शब्द भी कहते हैं, जैसे हम स्वरूप हैं लेकिन बाबा सागर हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि सागर भी वास्तव में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर देखें तो उससे भी अच्छा है कांस्टेंट, न बाबा कभी कम होता है न ज्यादा होता है, कोई चीज में कम या ज्यादा होने की बात नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब बाबा की याद में रहेंगे तो वर्षा मिल जाएगा, बाद में नहीं अभी मिल रहा है। देखो आप जब बाबा को याद करते हैं तो सबसे पहले क्या वर्षा मिलता है, शांति, सुख, आनंद, ये जो अनुभूति हो रही है, ये जो वर्षा है, ये सतयुग से बढ़कर है जो जीवन मुक्ति है ना, क्योंकि ये ईश्वरीय सुख है, ये ईश्वरीय आनंद है, ये सतयुग में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो वर्षा मिलने वाला है इसको अभी हमें एंजॉय करना है, अभी हमें फील करना है ना। दूसरी बात बाबा ने कहा कि इसमें गीत, कविता या डायलॉग्स आदि की भी जरूरत नहीं है, है ना, गीत, कविता या डायलॉग की जरूरत नहीं है, क्यों, और कई बार इसकी जरूरत है, क्यों, है ना। कई बार बाबा कहते हैं कि कई बार हमारी स्थिति ना थोड़ी हमेशा स्टेबल तो नहीं होती, कई बार थोड़ी नीचे भी आती है। तो ऐसे समय के लिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे अपने पास कुछ गीत रखो, ऐसे है ना, कभी आप थोड़ी उदासी आई, थोड़ा ये आई, तो गीत को आपने गीत को सुन लो तो थोड़ा फिर से उमंग में आ जाएंगे। तो यहां क्या प्रूव हो रहा है, हमारा लक्ष्य गीत सुनने का नहीं है, हमारा लक्ष्य कविता सुनने का नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से हमको उस स्थिति में जाना है जो हमें बनाना है ना, बाबा की याद में स्थित होना है। तो ये जो गीत और कविता है, डायलॉग है, ये किसके लिए है, वास्तव में हमको इस आवाज की दुनिया से परे ले जाने के लिए। तो इसलिए हमेशा जरूरत नहीं है, यदि आप की स्थिति बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो एंजॉय करें उसको। ऐसा नहीं है कि हम अभी फ्री बैठे हैं तो हम गीत कविता सुनते रहे, नहीं, याद करें बाबा को। नहीं याद कर पा रहे हैं, स्थिति अच्छी नहीं है, तो भले आप थोड़ा सा सुन लें, लेकिन इसको आधार नहीं बना लेना है इसको। तो इसलिए बाबा ने कहा कि गीत कविता डायलॉग्स तो इसकी जरूरत है, लेकिन पर्टिकुलर बहुत कम समय के लिए, जब स्थिति ठीक नहीं है या आपको स्थिति अभी बनानी है या बहुत सेवा से आए हैं और तुरंत ही आप उसमें स्थित नहीं हो रहे हैं, अगर आप गीत नहीं बजाते हैं तो क्या होंगे, सो जाएंगे, नींद आ जाएगी क्योंकि थके हुए, इसलिए थोड़ा गीत सुनते हैं तो थोड़ा उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो इसलिए यदि हम बाबा की याद में स्थित हो सकते हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है इसमें। दूसरी बात बाबा ने बताया कि लिबरेटर है ना, बाबा ने कहा कि लिबरेटर जो है, लिबरेटर शब्द से क्या प्रूव हो जाता है कि लिबरेट करने वाला कोई और है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई बच्चा खेल रहा है ना, कहीं धूल मिट्टी में या कीचड़ में खेल रहा है बच्चा, और वो बच्चा गिर जाता है ना, कीचड़ में गिर जाता है और ये होता है, तो क्या करते हैं, घर आएगा फिर उसकी माँ सब कपड़े और क्लीन करेगी, सब कुछ क्लीन करेगी, फिर बच्चा उसमें क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए बहुत अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुआ, उसमें थोड़े दाग रह गए, तो बच्चा कहेगा ना, ये कैसे साफ किया, इसमें दाग ही रह गया, तो ऐसा लगता है जैसे गलती किसकी है, उसकी माँ की है, लेकिन वास्तव में गलती कहाँ की है, जो खेला उसने धूल मिट्टी में, गलती वहां से है ना, कीचड़ से, लेकिन वो अगर वो तो दोष किसको दे रहा है, माँ को, है ना। ऐसा हम भी क्या करते हैं, और दुनिया में भी देखने में आता है, कोई भी बात होती है ना तो कोई आरोप लगाना है या एक्सक्यूज करना है तो हम किस पर डालते हैं, हम समझते हैं ना, सबसे चुप कौन रहता है, सबसे शांत कौन रहता है, जो कुछ बोलेगा नहीं, तो कहेंगे इनके कारण ऐसा हुआ है। तो हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारा अपोज न कर सके और हम उसके ऊपर डाल करके बच जाए, ऐसा करते हैं ना। तो इसी प्रकार हम क्या सोचते हैं, सबसे चुपचाप कौन रहता है, सबसे शांत कौन रहता है, हम समझते हैं सबसे शांत तो बाबा ही रहता है ना, भगवान ही रहता है ना। तो द्वापर से भी हमने क्या कहना शुरू कर दिया, कुछ गड़बड़ भी हो गई ना तो क्या कहेंगे, भगवान ने किया। कोई बच्चा शरीर छोड़ दिया तो किसने किया, भगवान ने किया, क्योंकि अब हम भगवान को कुछ भी कहते रहे वो आके प्रूव करने वाला तो है नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका हम फायदा उठाते हैं, चुप रहने का, शांत रहने का। और इसका हम देखते हैं कि बाबा भी आते हैं तो बाबा क्या प्रूव करते हैं, बाबा आकर ये नहीं कहते हैं कि, केवल ये नहीं कहते कि भाई मैंने नहीं किया ऐसा, मैं इसमें, बाबा ये कहते हैं मैं दुख हरता हूं सुख करता हूं और मैंने नहीं किया, ये तो बाबा कहते हैं। दूसरी बात, बाबा भी क्या करते हैं, बाबा की ग्रेटनेस देखो, हम द्वापर से बाबा को ही सब आरोप लगाते रहे, हमारा कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, भगवान ने किया, वही तो सुख देता है वही दुख देता है, हम आरोप लगाते रहे बाबा पर, लेकिन बाबा आकर ये प्रूव नहीं करते हैं कि बच्चे मैंने नहीं किया। बाबा क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन बाबा दूसरी बात क्या कहते हैं, बाबा ये कहते हैं कि आपसे भी गलती नहीं हुई, बाबा ये भी कहते हैं आपसे गलती नहीं हुई, गलती किसकी है, रावण की है ना, बाबा ने कहा रावण की गलती है, ब्राह्मण कहाँ ढूंढेंगे। तो देखो बाबा कैसे बच्चों को बचाता है ना, ये नहीं कहता कि आपकी गलती है, किसकी गलती है, रावण, उसने करवाया है ना, उसने आपको श्रापित किया। लेकिन वास्तव में बाबा समझाता भी है कि ये जो गलती हुई है ना, ये जो फॉल्ट आया जीवन में, ये क्यों हुआ, जब हम देह अभिमान या देह के बस हो गए है ना, देहभान या देह अभिमान में आ गए, तो इसके बस होकर जो भी कर्म हमने किया वो क्या हुआ, हमारे रुलाने के निमित्त बन गया। इसलिए कहते हैं ना रावण क्या करता है, रुलाता है ना। तो जितना हम देह भान में आकर कर्म करते हैं उतना ही हम श्रापित होते जाते हैं, रावण का माया का वर्ग चलने लगता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें इस बात को फील करना है, इस बात को समझाना भी है कि देखो भाई बाबा अगर लिबरेटर है ना, जैसे माँ ने बच्चे के कपड़े को क्लीन किया, उसको कुछ मान लो दाग रह भी गए तो माँ की गलती तो नहीं है ना, बच्चे की गलती है। तो ऐसे ही हमारे भी जीवन में कुछ अगर गलती होती है, कुछ बातें होती है, तो इसको हम देखें, स्वीकार भी है कि हमारे द्वारा हुआ है ना, बाबा तो आकर के ठीक करते ना। तो यदि हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के ज्ञान का हम चिंतन करते हैं, तो ये दाग मिटता जाता है। दूसरी बात बाबा ने बताया आज कि जैसे बाबा ने आज ड्रामा नाटक बायोस्कोप इसको भी क्लियर किया, तो वास्तव में जैसे नाटक है और ड्रामा है, तो इसको भी नाटक को ही इंग्लिश में क्या कहेंगे, ड्रामा, नाटक को ही ड्रामा कहेंगे। और दूसरा बाबा ने क्या कहा, बायोस्कोप, बायोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, चलचित्र दर्शी, जैसे सिनेमा है ना उसको चलचित्र कहेंगे, लेकिन बायोस्कोप को केवल चलचित्र नहीं, क्या कहेंगे, चलचित्र दर्शी कहते हैं। तो बाबा ने यहां इसी बात को क्लियर किया नाटक या ड्रामा में, तो बाबा ने ड्रामा को वास्तव में मूवी का रूप दिया आज। तो बाबा ने कहा जैसे मान लो रामलीला हो रहा है और रामलीला में अगर रावण बीमार हो जाता है, वो एक्ट नहीं कर पाएगा उस दिन, तो क्या करेंगे, रामलीला बंद करेंगे, कोई दूसरे रावण को लेकर आ जाएंगे, कोई मोटा ताजा हो दूसरा, हाँ कहेंगे आज आप रावण बन जाओ। तो बाबा ने यह कहा कि इसमें क्या होता है, एक्टर को फिर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मूवी है, मान लो जो फिल्म बन गई है या मूवी है, तो वही मूवी चलेगी ना, उसमें चेंज कर सकते हैं क्या, चेंज तो नहीं कर सकते। तो बाबा ने बताया कि ये अंतर है, और इसीलिए बाबा ने कहा कि आज बाबा क्यों ऐसे समझा रहे हैं कि ये ड्रामा नाटक बायोस्कोप, तो बाबा ने बहुत सहज बताया इसकी विधि। बाबा ने कहा कि इसका कारण ये है, बाबा ऐसा इसलिए समझा रहे हैं कि बच्चे आप भी ऐसे समझा सकते हो किसी को। तो बाबा ने कहा अगर इस तरह से समझाएंगे तो इसमें सब बातें आ जाती हैं। किस तरह से समझाएंगे, बाबा ने कहा जैसे नई दुनिया थी तो नई दुनिया का क्या स्वरूप था, नई दुनिया में क्या था, पुरानी दुनिया कैसे हो गई है ना, इसको कौन फिर से नया बनाता है, तो अगर इस आधार से इस हिसाब से समझाएंगे तो बाबा ने कहा कि इसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो बाबा ने आज इतना सिंपल इतना इजी वे समझाया है। ओके, थैंक यू, ओम शांति।